पृष्ठ संख्या 400, अध्याय 26। अध्याय शीर्षक है ईश्वर विहीन धर्म या रिलीजन विदाउट गॉड। अब शीर्षक है विषय प्रवेश। ईश्वर विहीन धर्म कहने से कई प्रश्न हमारे दिमाग में उभरते हैं। क्या यह संभव है कि धर्म हो और वह ईश्वर विहीन हो? क्या ईश्वर के बिना धर्म का अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है? क्या धर्मों में ईश्वर का अस्तित्व होना आवश्यक है? यदि ईश्वर को धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता तो क्या धर्म को वास्तविक अर्थों में धर्म कहा जा सकता है? ऐतिहासिक दृष्टि से हम इस विषय पर दृष्टिपात कर सकते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे सामान्य रूप से धर्म कहने मात्र से ईश्वर की संकल्पना हो जाती है, अर्थात ईश्वर और धर्म का साथ साथ होना आवश्यक सा प्रतीत होता है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि यह आवश्यक नहीं कि धर्म कहने मात्र से ईश्वर का अवबोध हो ही। विश्व में बहुत से धर्म हैं जिनमें ईश्वर को अस्वीकार किया गया है। इतना ही नहीं, बहुत से धर्मों में सो उद्देश्य ईश्वर का खंडन किया गया है। ऐसी दशा में यह कहना कि बिना ईश्वर के धर्म संभव नहीं है उचित प्रतीत नहीं होता। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर तो यही सत्य सिद्ध होता है कि ईश्वर के अभाव में भी धर्मों का अस्तित्व है। यदि ऐसा है तो ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि ईश्वर के बिना भी जो धर्म है उन्हें किस अर्थ में धर्म की संज्ञा प्रदान की जाती है। ईश्वर विहीन धर्मों में मुख्य रूप से जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा मानवीय धर्म का उल्लेख किया जाता है। इतना ही नहीं, कन्फ्यूशियन, ताओ तथा सिंटो धर्मों में ईश्वर जैसी सत्ता का अभाव पाया जाता है। पुनः वही प्रश्न उठता है कि जब धर्मों में ईश्वर का लोप है तो उन्हें धर्म कैसे कहा जाता है? क्या आधार है जिसके कारण ईश्वर के बिना भी धर्म की संज्ञा प्रदान की जाती है? इन प्रश्नों का उत्तर हम कुछ प्रमुख ईश्वर विहीन धर्मों के आधार पर देने का प्रयास कर सकते हैं। हम देखेंगे कि अनिश्वरवादी धर्म ईश्वर को अस्वीकार करने के लिए कौन कौन तर्क प्रस्तुत करते हैं और इसके बावजूद धर्म की श्रेणी में उनकी गिनती क्यों की जाती है। अब शीर्षक है जैन धर्म और ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध तर्क। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले तर्क देते हैं कि ईश्वर जगत का निमित्त कारण या इफिशियंट कॉज है। जिस प्रकार कुंभकार घड़े का निर्माण करता है, उसी प्रकार ईश्वर जगत का निर्माण करता है। अतः ईश्वर ही जगत का निमित्त कारण है। ईश्वर ने ही जगत की रचना नित्य रहने वाले परमाणुओं से की। पृष्ठ संख्या 401। यही परमाणु उपादान कारण या मैटेरियल कॉज है। ईश्वर जगत की रचना करने की इच्छा करता है और जगत की रचना का प्रयास भी करता है। ईश्वरवादियों के इस तर्क की आलोचना जैन धर्म निम्नलिखित तर्कों द्वारा करता है। इसमें पहला बिंदु है, यदि ईश्वर जगत का निर्माण करता है तो यहाँ प्रश्न होता है कि क्या ईश्वर शरीर के द्वारा जगत की रचना करता है या बिना शरीर के, जिस प्रकार कुंभकार शरीर सहित घड़े की रचना करता है उसी तरह ईश्वर भी जगत की रचना सशरीर करता है। बिना शरीर के वह जगत की रचना नहीं कर सकता। दूसरे, रचना की प्रक्रिया में गति की आवश्यकता होती है और इसके लिए शरीर का होना आवश्यक है। यदि ईश्वर सशरीर है तो क्या वह दृश्य है या अदृश्य? ईश्वर दृश्य नहीं है। फिर प्रश्न होता है कि हम मनुष्यों का शरीर तो पापों और पुण्यों का फल है, किंतु ईश्वर का शरीर किसका फल हो सकता है? ईश्वर का न पुण्य है और न पाप। मनुष्य के पापों और पुण्यों का भी फल ईश्वर का शरीर नहीं हो सकता। सिद्ध है कि ईश्वर का शरीर होना संभव नहीं है। शरीर नहीं है तो जगत की रचना भी नहीं कर सकता, क्योंकि रचना के लिए शरीर का होना आवश्यक है। बिंदु दूसरा है, यदि जगत एक रचना है अर्थात ईश्वर द्वारा यह जगत बनाया गया है तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कोई एक ही स्वतंत्र कर्ता बिना सहायक सामग्री के जगत की रचना करता है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि जगत एक रचना है तो इसे कई ईश्वरों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि जैसे कई शिल्पकार मिलकर एक महल का निर्माण करते हैं और अनेक मधुमक्खियां मिलकर एक छत्ता बनाती हैं, वैसे ही कई ईश्वरों ने मिलकर यह जगत बनाया है, किंतु ईश्वरवादी इसे स्वीकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि कई ईश्वरों से जगत में अव्यवस्था हो जाएगी। बिंदु तीसरा है, ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर जगत का सृष्टा है। प्रश्न यह होता है कि ईश्वर किस प्रयोजन से जगत की सृष्टि करता है? देखा यह जाता है कि चेतन प्राणी जो कुछ भी करता है वह स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है। क्या ईश्वर भी स्वार्थ या करुणा की भावना से प्रेरित होकर सृष्टि करता है? किंतु ईश्वर को नित्य तृप्त कहा जाता है, अर्थात ईश्वर की कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो अपूर्ण हो। उसका तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। अतः जगत की रचना के पीछे ईश्वर का न कोई स्वार्थ है और न जीवों के प्रति करुणा करना ही कोई उसका प्रयोजन है। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर क्रीड़ा के लिए सृष्टि करता है तो उसकी रचना बच्चों के खेल जैसी निष्प्रयोजन होगी। यदि ईश्वरवादी यह कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर के स्वभाव से ही होती है तो यह कहना वैसा ही होगा जैसा यह कि सभी कार्य अपने कारणों के स्वभाव से होते हैं। जब कार्य अपने कारणों के स्वभाव से ही होते हैं तो फिर ईश्वर को स्वीकार करना व्यर्थ है, अर्थात ईश्वर को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। बिंदु चौथा है, ईश्वरवादी तर्क देता है कि ईश्वर जगत की रचना जीवों के पाप और पुण्य के आधार पर करता है। अर्थात जीवों के पाप कर्मों या पुण्य कर्मों की सहायता से सृष्टि करता है। यहाँ प्रश्न होता है कि ईश्वर यदि पाप पुण्य की सहायता से सृष्टि करता है तो वह स्वतंत्र कहाँ रह जाता है? यदि यह कहा जाए कि ईश्वर बिना किसी सहायता के रचना करता है तो फिर प्रश्न यह होता है कि ईश्वर पक्षपातपूर्ण कार्य क्यों करता है? अर्थात किसी जीव को वह सुखी तथा किसी को दुखी क्यों बनाता है? पृष्ठ संख्या 402। ईश्वर कुछ को दुखी तथा कुछ को सुखी बनाकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों करता है? यदि जीव पाप पुण्य के कारण दुखी सुखी होता है तो पाप पुण्य ही ईश्वर बन जाएंगे, ईश्वर तो अनिश्वर सिद्ध हो जाएगा। जैन दर्शन नानात्व की व्याख्या कर्म के नियम के आधार पर करता है। वह ईश्वर को कर्माध्यक्ष के रूप में स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझता। बिंदु पांचवा है, जैन दर्शन ईश्वरवादियों के इस मत का भी खंडन करता है कि ईश्वर नित्य है और जगत की सृष्टि करता है। उनका तर्क है कि ईश्वरवादी मानता है कि ईश्वर की तीन प्रकृतियां हैं। इसमें पहला है रजस, दूसरा है सत्व और तीसरा है तमस। रजस से वह जगत की सृष्टि करता है, सत्व से जगत का पालन करता है और तमस से उसका नाश करता है। अर्थात ईश्वर के तीन कार्य उसकी तीन अलग अलग प्रकृतियों से संपन्न होते हैं। अब यहाँ कठिनाई यह है कि क्या ईश्वर की तीन अलग अलग प्रकृतियाँ उसकी नित्यता का खंडन नहीं करती? निश्चित रूप से इससे ईश्वर की नित्यता का खंडन होता है। इतना ही नहीं, जैन दर्शन यह भी कहता है कि अगर ईश्वर नित्य हो भी तो वह सदैव सृष्टि क्यों नहीं करता? अगर इसका कारण ईश्वर का संकल्प माना जाए तो चूंकि उसका संकल्प उसके अस्तित्व पर निर्भर है, इसलिए उसे सदैव सृष्टि करते रहना चाहिए। अगर उसकी विभिन्न सृष्टियों के कारण उसके विभिन्न संकल्प हो तो वह नित्य नहीं रहेगा। नित्य ईश्वर जगत की सृष्टि नहीं कर सकता। अब अगला शीर्षक है बौद्ध धर्म। इसमें शीर्षक के रूप में पहला बिंदु है उद्देश्य मूलक तर्क का खंडन। ईश्वर की सत्ता के समर्थन में जो प्राचीन काल से परंपरागत तर्क उपस्थित किए जाते थे, प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने उन सब का खंडन किया है। यह प्रमाण कि जैसे एक घड़ी अपने बनाने वाले घड़ी साज का संकेत करती है, इसी प्रकार यह संसार इसके बनाने वाले एक ईश्वर का संकेत करता है। यह प्रमाण प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुयायी स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि हमें किसी चेतन कारण को मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक बीज विकसित होकर अंकुर बन जाता है एवं अंकुर वृक्ष की शाखा के रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार बिना किसी विचार शक्ति संपन्न कारण अथवा बिना किसी शासक दैव के उत्पत्ति संभव है। बुद्ध ऐसे किसी संसार के सृष्टा की कल्पना नहीं करते जिसने युगों पूर्व इस संसार की श्रृंखला का प्रारंभ किया हो। संसार के प्रवाह का कारण उनकी सम्मति में स्वयं संसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बुद्ध की दृष्टि में सृष्टि विद्या संबंधी तर्क में कोई बल नहीं है। अब बिंदु दूसरा है, जन्म का कारण कर्म है, कोई दैवीय सत्ता नहीं। जगत का निर्माण कोई बाहरी सत्ता देहधारी ईश्वर नहीं करता। मनुष्य अपने कर्मों से जन्म धारण करता है, कर्म के ही अनुसार उसे वैसे माता पिता मिलते हैं। यहाँ तक कि संसार में जो वैचित्र दिखाई देता है या संसार की नाना विधता कर्मों के ही कारण है। कर्मजम लोक वैचित्र्यम, कर्म ही फल के रूप में प्राधान्य प्राप्त करते हैं। पृष्ठ संख्या 403। बिंदु तीसरा है, संसार का कोई आदि कारण नहीं है। किसी आदि कारण अर्थात ईश्वर को स्वीकार करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा कारण जिसका कारण अन्य कुछ न हो आत्मविरोधी है। कारण रहित कारण की कल्पना नहीं की जा सकती। ईश्वर यदि जगत का कारण है तो ईश्वर का कौन कारण है? यह प्रश्न इसलिए होता है कि कारण रहित कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, ईश्वर को जगत का कारण इसलिए भी नहीं माना जा सकता कि यह जगत तो अपूर्ण है और ईश्वर जो कि पूर्ण कहा जाता है, फिर वह इस जगत का रचयिता कैसे कहा जा सकता है? प्रयोजनवादी तर्क की आलोचना में यह कहा जाता है कि एक ऐसा सृष्टा जिसे अपने में पूर्ण कहा जाता है, ऐसे अपूर्ण संसार का रचयिता कैसे हो सकता है? इसलिए कोई परोपकारी अथवा मनमौजी ईश्वर नहीं है, किंतु एक ऐसा विधान अर्थात कर्मों का विधान जो निश्चयात्मक तर्क पर आश्रित है, वस्तु सत्य है। स्पिनोजा के समान बुद्ध का भी यही मत प्रतीत होता है कि संसार न अच्छा है न बुरा है, न तो हृदय विहीन है और न ही विवेक शून्य है, न पूर्ण है और न ही सुंदर है। यह मनुष्य के अपने मानवीकरण के स्वभाव के कारण ही है, जो वह विश्व रचना की प्रक्रिया को मनुष्य की सी रचना के रूप में देखता है। प्रकृति ऐसे किन्हीं नियमों का शासन स्वीकार नहीं करती जो बाहर से उसके ऊपर थोपे जाएं। हमें प्रकृति के अंदर केवल आवश्यकताएं ही कार्य करती प्रतीत होती हैं। बिंदु चौथा है, बुद्ध के अनुसार यह संसार कारण कार्य के नियम जिसे प्रतित्य समुत्पाद कहते हैं से संचालित होता है। इसके लिए किसी अलौकिक सत्ता ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कारण का नियम किसी अलौकिक सत्ता के कारण नहीं है। इस नियम को किसी अधिष्ठाता की आवश्यकता नहीं है। सारा संसार उत्पत्ति और विनाश के नियम के अधीन है। प्रतित्य समुत्पाद के नियम अर्थात कारण कार्य का नियम का अर्थ है कुछ भी नियति के अधीन नहीं है, सब कुछ अपने पूर्ववर्ती प्रत्ययों पर निर्भर है। पूर्ववर्ती प्रत्ययों का लोप हो जाता है और तब तुरंत ही उनके कार्यों का उदय होता है। यही प्रतित्य समुत्पाद का नियम है। यह वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि सभी कुछ कारण के अधीन है, विश्व का कोई कर्ता नहीं है। बुद्ध के अनुसार यह संसार अनादि और अनंत है, प्रतीत समुत्पाद अनादि और अनंत है, वह किसी स्वामी से शून्य है। पांचवा बिंदु है, प्राचीन बौद्ध मत में ही नहीं अर्वाचीन बौद्ध धर्म द्वारा प्रस्तुत तर्कों से भी ईश्वरवादी मत का खंडन होता है। जैसे बिंदु अ है, तर्कों द्वारा ईश्वर के कर्तव्य को सिद्ध नहीं कर सकते। ब है, यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है तो मनुष्य को अधर्म युक्त कार्यों को करने की प्रेरणा भी वही देता है। स है, यदि धर्म ग्रंथों के लिए ईश्वर की प्रामाणिकता है तो धर्म ग्रंथों की परस्पर असंगत भाषा कैसे प्रमाणित हो सकती है। बिंदु द है, यदि ईश्वर को धर्मात्मा पुरुषों का प्रतिनिधित्व रूप माना जाए तो ईश्वर न तो पूर्ण असीम और न संपूर्ण सत ही होगा। बिंदु यह है, सृष्टि की रचना में उसका कोई प्रयोजन है या स्वार्थ या नहीं। यदि स्वार्थ है तो वह अपूर्ण है, यदि नहीं तो क्यों समय नष्ट करता है। यदि मनोरंजन के लिए यह करता है तो क्या वह बच्चा है। बिंदु र है, ईश्वर की सत्ता मानने से मनुष्य असमर्थ हो जाता है, क्योंकि लाचार होकर उसे ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। पृष्ठ संख्या 404। अब बिंदु ल है, यह सुझाव देने से क्या लाभ कि मनुष्यों को केवल भगवान की मर्जी से कष्ट मिलता है। बिंदु व है, यदि वह वरदान देने के लिए स्वतंत्र है तो वह दुराचारियों एवं दुष्ट आत्माओं को भी वर दे सकता है और सदाचारियों को भी नरक में भेजने के लिए स्वतंत्र है। बिंदु स है, यदि ईश्वर कर्मों के अनुसार मनुष्य को पारितोषिक देता है तो मनुष्य भी भगवान हो गए, क्योंकि जब पारितोषिक के विषय में उसे पूरी स्वतंत्रता न रही तो उसे मनुष्य मात्र का अधिपति ही क्यों कहा जाए। अब अगला शीर्षक है मानववाद, ह्यूमनिज्म। मानववाद अनिश्वरवाद का समर्थन करता है, यद्यपि मानववाद की सामान्यतः धर्म में गणना नहीं की जाती, फिर भी कुछ लोग इसे धर्म के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो विश्व के महान धर्मों में मानववाद की भावना समाहित है। सभी धर्म मानवता को सर्वोपरि स्थान देते हैं, किंतु जिस मानववाद की चर्चा आधुनिक काल में की जाती है वह मानववाद अमेरिका के कार्लिस लेमांट का मानववाद है। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा M.N. राय का मानववाद भी इसी श्रेणी में आता है। यह मानववाद मनुष्य तथा मनुष्य की महत्ता और उसके गुणों में अर्थात मानवता में आस्था और विश्वास करता है। मानववाद जीवित मानवता से प्रेम है। मानववाद का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यह मनुष्य के अस्तित्व, उसकी स्वतंत्रता तथा उसके कल्याण का पक्षपाती है। सारांश में मानववाद मानवता, विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और मनुष्य के भ्रातृत्व का समर्थक है। अब अगला शीर्षक है अतींद्रिय सत्ता का खंडन। इसमें पहला बिंदु है, मनुष्य चाहे जिस देश और स्तर का हो, उसके प्रति श्रद्धा और उसका हित साधन ही सर्वोपरि होना चाहिए। इस मानववाद का तो यहाँ तक कहना है कि विश्व धर्मों में मनुष्य के अतिरिक्त सर्वोपरि स्थान अतीन्द्रिय सत्ता को दिया जाता है तथा मोक्ष जैसी परिकल्पना में मनुष्य को उलझाए रखता है। मनुष्य की पूर्णता ईश्वर जैसी सत्ता के हाथ में रहती है, अतः मनुष्य गौण रह जाता है और उसके स्थान पर ईश्वर तथा अन्य देवी देवता पूज्य माने जाते हैं। मनुष्य का गौरव नगण्य हो जाता है। मनुष्य की गरिमा को पुनः लौटानी है। मानववाद का लक्ष्य ईश्वर या किसी अतीन्द्रिय सत्ता की खोज नहीं है। इसमें तत्व शास्त्र की मीमांसा नहीं होती। मानववाद ईश्वर की सत्ता को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि इससे या ईश्वर मनुष्य की महिमा और उसका स्थान गौण हो जाता है। मनुष्य की गरिमा स्वतः सिद्ध है, किसी बाह्य सत्ता की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य में ऐसे गुण हैं जो आदरणीय हैं, उसके लिए ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं है। बिंदु दूसरा है, मानववाद का लक्ष्य मनुष्य में पाए जाने वाले नैतिक गुणों का विकास और प्रसारण करना है। इसके लिए आत्मा और उसकी अमरता महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा है, मानववाद मानव कल्याण को अपना उद्देश्य मानता है, अतः वह अन्य मूल्यों जैसे सौंदर्य या आध्यात्मिक की अपेक्षा नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व देता है। बिंदु चौथा है, मानववाद मानव सुख के लिए इसी विश्व या यह लौकिक को महत्व देता है, किसी परलोक या अतीन्द्रिय लोक में विश्वास नहीं करता, अर्थात यह सीधे तौर पर आध्यात्म से नहीं जुड़ा है। पृष्ठ संख्या 405। अब बिंदु पांचवा है, मानववाद ईश्वर की सत्ता को इस आधार पर भी अस्वीकार करता है कि यह प्रकृतिवादी तत्व शास्त्र में आस्था रखता है। प्रकृतिवाद का अर्थ है वह सिद्धांत जो प्रकृति के नियमों में विश्वास करे, किसी बाह्य अतीन्द्रिय सत्ता में नहीं। संसार प्रकृति के नियमों से संचालित होता है, इसमें किसी दैवी सत्ता को महत्व नहीं दिया जाता। प्रकृति जड़ शक्तियों की समष्टि है, वह अपने नियमों से चलती है। बिंदु छठवां है, मानववाद ईश्वर और अध्यात्म का खंडन इस आधार पर भी करता है कि इसके अनुसार मृत्यु के पश्चात चेतना का लोप हो जाता है, शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं, किसी मरणोत्तर जीवन की कल्पना व्यर्थ है। बिंदु सातवां है, मानववाद ईश्वर की नहीं विज्ञान की सराहना करता है और कहता है कि मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्ति और क्षमता से अपनी समस्या का समाधान विज्ञान की सहायता से स्वतः करता है। ईश्वर नहीं, विज्ञान और मनुष्य की बुद्धि दोनों मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बिंदु आठवां है, मानववाद द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को इस आधार पर भी अस्वीकार किया जाता है कि यह भाग्यवाद दैववाद या नियतिवाद में विश्वास नहीं करता। मानव स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता ईश्वर जैसी सत्ता से बाधित नहीं है। बिंदु नौवां है, मानववाद धर्मनिरपेक्षतावाद को स्वीकार करके धर्म और ईश्वर तंत्र को अस्वीकार कर देता है। मानववाद का कहना है कि मानव का नैतिक मूल्य सांसारिक अनुभव पर आधारित है। इसके लिए किसी ईश्वर में विश्वास करना आवश्यक नहीं है। बिंदु दसवां है, मानववाद धर्म केवल इस रूप में है कि वह मानव कल्याण, लोक सेवा, नैतिक उत्थान, मानव स्वतंत्रता, मानव प्रगति, मानव गुण में आस्था रखता है। ईश्वर या अतींद्रिय सत्ता में विश्वास से मानव हित और मानव स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। मानव जीवन में ईश्वर और अध्यात्म में विश्वास से ईश्वर ही प्रमुख हो जाता है और मनुष्य गौण हो जाता है। मनुष्य में ऐसे नैतिक गुण हैं जो आदरणीय हैं, यही गुण ही पूजनीय है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं। मनुष्य स्वयं स्वतंत्र और अपने भाग्य का निर्माता है। सारांश में, मानववाद तथा कथित धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह वह धर्म है जो ईश्वर, अतींद्रिय शक्ति, अध्यात्म तथा आध्यात्मिक मूल्यों या रहस्यवादी स्थिति को अस्वीकार करता है। स्वर्ग या पुनर्जन्म या आत्मा की सत्ता को भी अस्वीकार करता है। यह अपने को धर्म केवल इस रूप में मानता है कि यह मानवीय गुणों की पूजा करता है। यह केवल मानवता के प्रति आस्थावान है। यह पूर्ण रूप से अनिश्वरवादी है। अब अगला शीर्षक है, कुछ अन्य विचारकों द्वारा धर्म का विरोध तथा अनिश्वरवाद का समर्थन। मानववाद तथा आधुनिक विज्ञान से प्रभावित तथा अत्यंत कट्टरवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले कुछ विचारक भी अनिश्वरवाद का ही समर्थन करते हैं। इनके अनुसार धर्म की तथा धर्म में ईश्वर तथा अलौकिक सत्ता और पारलौकिक जगत में आस्था तथा विश्वास निरर्थक है। पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद एक ऐसी ही दार्शनिक विचारधारा है जो अनुभूति और निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों और सत्यों पर विश्वास करता है। पृष्ठ संख्या 406। यह मत अनुभूति के परे किसी अलौकिक तत्व को स्वीकार नहीं करता। इस मत को दर्शन के रूप में अगस्त कामटे 1798 से 1857 ईस्वी तक ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार मनुष्य जब चिंतन के वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचता है, तब मनुष्य की बुद्धि परिपक्वता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी होती है। इस स्तर पर मनुष्य केवल विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान को यथार्थ मानता है। तत्व चिंतन में वह अतींद्रिय और अलौकिक सत्ता को केवल कल्पना मानता है। इन्होंने ईश्वर से युक्त धर्म के स्थान पर मानवता के धर्म की उद्घोषणा की। ईश्वर को तथा पारलौकिक जगत को स्वीकार नहीं किया। अब शीर्षक है विज्ञान। इसी तरह विज्ञान के शोधों ने भी ईश्वर तथा धर्म की पुरानी मान्यताओं का खंडन कर दिया है। अब पारलौकिक जगत या पुनर्जन्म तथा स्वर्ग की मान्यताओं को महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। विज्ञान ने मनुष्य को ऐसा मानने के लिए पर्याप्त अवसर दिया है। विज्ञान ने मनुष्य को इतना साहस प्रदान किया है कि वह अलौकिक जगत में बिना विश्वास किए अपना जीवन सुखमय और बाधा रहित बनाने की सोच लेता है। अब जीवन की बाधाओं पर ईश्वर नहीं विज्ञान विजय दिलाता है। कुछ विचारक जो विज्ञान का सहारा लेते हैं ईश्वर को निरंकुश शासक के रूप में मानते हैं और ऐसे ईश्वर का विरोध करते हुए कहते हैं कि ईश्वर परे के जगत का नहीं होना चाहिए, मनुष्यों के बीच का ही ईश्वर आवश्यक है। यहाँ तक कि कुछ लोग ईश्वर को व्यर्थ का भार मानने लगे हैं। ईश्वर की निरर्थकता को मानते हुए ईश्वर की मृत्यु या डेथ ऑफ गॉड की भी घोषणा की गई। नित्से ने ईश्वर की मृत्यु तक की घोषणा कर दी। धार्मिक विश्वास के लिए ईश्वर के अस्तित्व को आवश्यक नहीं माना जा रहा है। सारांश में ईश्वर की मृत्यु की घोषणा के साथ ही ऐसे धर्मशास्त्र का प्रादुर्भाव हो रहा है जिसमें ईश्वर को कोई स्थान नहीं है। अब ऐसा धर्मशास्त्र उत्पन्न हो रहा है जो ईश्वर विहीन होगा। इसके दो कारण हैं। एक तो कुछ समकालीन पाश्चात्य विचारकों का मानववाद तथा विज्ञान से प्रभावित होना तथा दूसरे ईसाई धर्म का रूढ़ियों से अत्यधिक ग्रस्त होना। इन्हीं कारणों से ईश्वर विहीनता संबंधी विचारों में वृद्धि हुई है। रही बात पूर्वी देशों के धर्मों की, जिनमें ईश्वर को या तो नकारा गया है या स्थान ही नहीं दिया गया, किंतु ईश्वर की मृत्यु जैसी घोषणा नहीं की गई है। पाश्चात्य विचारकों की ईश्वर की मृत्यु जैसी विचारधारा एक आंदोलन के रूप में है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। जिन धर्मों में ईश्वर को स्थान नहीं है वे धर्म तो हैं, किंतु उनमें ईश्वर को किसी आंदोलन के तहत नहीं नकारा गया है। उनमें ईश्वर नहीं है तो क्या एक अतींद्रियता या पवित्रता को तो स्थान है, जो धर्म के लिए आवश्यक अंगों में से मुख्य है। सारांश में ईश्वर विहीनता की चर्चा का आधार विश्व के धर्मों को नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जिन धर्मों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है उन्हें धर्म किस आधार पर कहा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इस पर आधारित है कि धर्म और ईश्वर की मान्यता है। अर्थात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को धर्म की संज्ञा क्यों प्रदान की जाती है? इसका उत्तर धर्म तथा ईश्वर की संकल्पना पर आधारित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले हमें यहाँ यह निर्धारित कर लेना आवश्यक है कि बौद्ध और जैन धर्म के साथ लोगों ने मानवतावाद को भी धर्म कहा है। क्या उसे धर्म की संज्ञा दी जा सकती है? पृष्ठ संख्या 407। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि मानवता की बात तो सभी धर्मों में स्वीकार की गई है। जिस धर्म में मानवता का ख्याल नहीं किया जाता वह धर्म हो ही नहीं सकता। मानवतावाद कोई धर्म के नाम से अलग विशेष धर्म नहीं है। डी एम एडवर्ड ने तो इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि मानवतावाद में वास्तविक धर्म की सृजनशीलता तथा उत्तेजना का अभाव है। यह केवल बौद्धिक विवेचना का विषय बनकर रह जाता है। यह धर्म का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा धर्म जो कि कामटे का मानववाद, जो जल थल में कभी नहीं था और न जिसमें वास्तविक धर्म की सृजनशीलता तथा उत्तेजना ही प्राप्त होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसकी आलोचना करते हुए ठीक ही कहा है कि जीवन के मूल्य तभी सार्थक सिद्ध होते हैं जब धर्म उन्हें अतींद्रिय सत्य से संबद्ध करता है। मानववाद मूल्य को स्वीकार तो करता है, परंतु वह अतींद्रिय सत्ता को नकार देता है। अतः सत्ता के अभाव में मूल्यों के प्रति हमारी आस्था सबल और अस्थाई नहीं होगी। अतः मानववाद धर्म का स्थान नहीं ले सकता। मानववाद को धर्म की संज्ञा न देने का एक यह आधार है कि जहां सभी आस्तिक और अनिश्वरवादी धर्म लौकिक जगत से परे के जीवन में आस्था रखते हैं, वहां मानववाद यह लौकिक जीवन तक अपने को सीमित रखता है। वह पारलौकिकता को बिल्कुल महत्व नहीं देता। ऐसी स्थिति में मानव का कल्याण वह कैसे कर सकता है? मानव की आंतरिक पिपासा धर्म में पूर्ण होती है, क्योंकि धर्म परे के जीवन में विश्वास करता है। मानववाद में इसका अभाव है, अतः वह धर्म की श्रेणी में नहीं आता। इस प्रकार यदि मानववाद को धर्म से हटा दिया जाए तो ईश्वर विहीन धर्म, जैन और बौद्ध धर्म, जिनमें सो उद्देश्य ईश्वर को नकारा गया है, ही धर्म की श्रेणी में गिने जाते हैं। अनिश्वरवादी होते हुए भी इन्हें धर्म इसलिए कहा जाता है कि इनमें मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था, शुचिता, सत्य, अहिंसा, परे की भावना वर्तमान है। मानव के भीतर श्रद्धा और भक्ति की भावना विद्यमान है। उसके प्रकाशन के लिए किसी श्रद्धेय की आवश्यकता है। बिना पूज्य के मनुष्य की पूजा की भावना का क्या होगा? यह एक प्रश्न होता है। जैन और बौद्ध धर्मों में बिना ईश्वर की उपस्थिति के भी मनुष्य की उपयुक्त भावनाएं पूर्ण होती हैं। अतः इन्हें धर्म की संज्ञा दी जानी चाहिए और वे धर्म की श्रेणी में हैं भी। ईश्वरवादी धर्मों में भी धर्म के यही तत्व पाए जाते हैं। हमने धर्म की परिभाषा करते समय यथोचित परिभाषा के अंतर्गत देखा है कि गैलवे की धर्म की परिभाषा अन्य परिभाषाओं से अधिक उचित है। अन्य परिभाषाएं जहां एकांगी प्रतीत होती हैं, वहां गैलवे की परिभाषा धर्म के सभी तत्वों को समाहित करती है और वही उचित परिभाषा है। इस परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है कि अपने से परे की शक्ति में मनुष्य का वह विश्वास धर्म है जिसके द्वारा वह अपनी भावनाओं की संतुष्टि और जीवन की स्थिरता प्राप्त करता है तथा जिसे वह पूजा एवं सेवा के माध्यम से प्रकट करता है। इस परिभाषा में धार्मिक चेतना के पक्ष विशेष पर बल न देकर भावना, ज्ञान और क्रिया को समान महत्व प्रदान किया गया है। धर्म का ज्ञानात्मक पहलू विश्वास से प्रकट होता है। भावनात्मक पहलू की पुष्टि मानव की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा होती है। जीवन की स्थिरता की चर्चा इस परिभाषा में हुई है। यह स्थिरता आत्मरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति से प्राप्त होती है। धर्म द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति होती है। पृष्ठ संख्या 408। धार्मिक चेतना के क्रियात्मक पहलू की संकल्प, पूजा, सेवा आदि क्रियाओं द्वारा पूर्ति होती है, अर्थात धर्म की संपूर्ण कसौटी इस परिभाषा में सम्मिलित है। यदि कोई कहता है कि गैलवे की इस परिभाषा में ईश्वर को विशेष महत्व दिया गया है, किंतु सभी धर्मों में ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया है, विशेष रूप में से जैन तथा बौद्ध धर्मों में ईश्वर की मान्यता नहीं है, फिर इन्हें धर्म की संज्ञा कैसे प्रदान की जा सकती है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सच्चे धर्म की कसौटी में, जैसा कि ऊपर हमने कहा है कि अतिंद्रियता, शुचिता, पूजा की भावना, सत्य के प्रति निष्ठा आदि धर्म के तत्व या कसौटी है। ये सभी लक्षण या तत्व जैन और बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। साक्षात रूप में ईश्वर की मान्यता न होने से धर्म की संज्ञा में कोई कमी नहीं आती। फिर भी गैलवे ने ईश्वर शब्द का प्रयोग न करके पराशक्ति या पावर बियॉन्ड का उपयोग किया है। W.R. Inge भी कहते हैं कि आवर कॉन्शियसनेस ऑफ द बियॉन्ड इज आई से द रॉ मटेरियल ऑफ ऑल रिलीजन, अर्थात यह परे की चेतना सभी धर्मों का कच्चा माल है। वास्तव में पराशक्ति से साक्षात रूप में अतिंद्रियता या पारलौकिकता का स्पष्ट बोध होता है। यह तो सभी आध्यात्मिक धर्मों में तथा मानव विवेक से भी स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान जगत ही सब कुछ नहीं है। एक अदृश्य जगत अपने अस्थायित्व और पूर्णता के आकर्षण से आकर्षित कर रहा है। वह निरंतर और अनश्वर है। इस जगत की अनुभवात्मक चेतना घोषणा करती है कि यहाँ सभी कुछ क्षण भंगुर और नाशवान है। धर्म में इस परे की भावना को महत्वपूर्ण माना जाता है। आदिम धर्मों में भी यह परे की सत्ता टोटम, जीववाद या पूर्वज आराधना में अस्पष्ट झलकती है। आदिम मनुष्य इसी की भावना से अभिभूत होकर उन्मुख हुआ था। धर्म की दृष्टि से अविकसित व्यक्ति अब भी भूत प्रेत या पेड़ पौधों की पूजा इसी आधार पर करता है। अनिश्वरवादी धर्मों अर्थात जैन तथा बौद्ध धर्मों में यह तथ्य देख सकते हैं। क्या जैन तथा बौद्ध धर्म इस जगत की नश्वरता को स्वीकार नहीं करता? क्या वह मुक्तिदायक विचारों से अग्रसर नहीं होता? वास्तव में यही धर्म मुक्तिदायक धर्म कहे जाने के अधिकारी हैं। सारांश यह है कि परे का भाव सभी धर्मों में समाविष्ट है। इसके विचार मात्र से धार्मिकता का प्रारंभ स्वीकार किया जा सकता है। पराशक्ति का अर्थ केवल ईश्वरवाद तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसी से या परे धर्म में निहित आश्चर्य और रहस्यमयता की व्याख्या हो सकती है। यही धर्म की भित्ति है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म केवल इसी आधार पर धर्म नहीं है। इनको धर्म मानने का एक आधार धार्मिक मूल्य भी है, जैसे सत्यनिष्ठा, शुद्ध आचरण, अहिंसा का पालन, इन्हीं मूल्यों के कारण धर्म का अस्तित्व है। निर्वाण या मोक्ष के लिए शुचिता, ब्रह्मचर्य, सत्य का पालन, अपरिग्रह की भावना आवश्यक है। जैन और बौद्ध धर्म में इन मूल्यों की चरम सीमा देखी जा सकती है। अब अगला शीर्षक है, क्या मूल्यों के कारण इन धर्मों को धर्म की संज्ञा दी जाती है? धर्म के लिए मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, फिर भी यह कहना कि इन मूल्यों के कारण ही जैन और बौद्ध धर्म की गणना धर्म के अंतर्गत की जाती है उचित नहीं है। इन धर्मों में पराशक्त की अवधारणा रहती है। यही पराशक्ति बौद्ध धर्म में बुद्ध के रूप में और जैन धर्म में तीर्थंकर के रूप में है। महायान धर्म में तो बुद्ध को साक्षात ईश्वर के स्थान पर पंच परमेष्टि अर्थात अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु की आराधना की जाती है। पृष्ठ संख्या 409। पूजा, प्रार्थना आदि क्रियाएं धर्म में अपेक्षित हैं और जैन तथा बौद्ध धर्म में इन क्रियाओं को देखा जा सकता है। सारांश में इन धर्मों को अनिश्वरवादी होने पर भी धर्म की संज्ञा दी जाती है। एक आध्यात्मिक दृष्टि होती है जिसके होने पर अनिश्वरवादी धर्म धर्म की श्रेणी में आते हैं। केवल मूल्यों की गणना के आधार पर धर्म की प्रतिष्ठापना नहीं की जा सकती। अब अगला शीर्षक है, धर्मों में ईश्वर का स्थान या क्या बिना ईश्वर के धर्म संभव नहीं है? ऊपर धर्म की जो गैलवे की यथोचित परिभाषा दी गई है उससे यही पता चलता है कि धर्म में ईश्वर का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमने देखा कि समकालीन अनेक विचारक विज्ञान और मानववादी दृष्टिकोण से प्रभावित लोगों ने धर्म में ईश्वर का स्थान स्वीकार नहीं किया है, किंतु जैसा कि धर्म के स्वरूप का विश्लेषण गैलवे की परिभाषा के आधार पर किया गया है उससे यही सिद्ध होता है कि धर्म और कुछ नहीं मनुष्य द्वारा ईश्वर के प्रति की गई प्रतिक्रिया है। मनुष्य अपने से परे के अतींद्रिय सत्ता में विश्वास करता है, यह ज्ञान है। उसके प्रति आदर, श्रद्धा, भय की भावना व्यक्त करता है, यह भावना है। और प्रार्थना, पूजा, पवित्रता, शुद्धि आदि क्रिया का पालन करता है, यह संकल्प है। इस प्रकार मनुष्य के अंदर विद्यमान ज्ञान, भावना और संकल्प या क्रिया से सिद्ध होता है कि एक ईश्वर की सत्ता है। फ्लिंट तो धर्म को ईश्वरवाद का रूप ही मानते हैं। इनके अनुसार धर्म के केंद्र में एकमात्र ईश्वर है। यदि ईश्वर को स्वीकार न करें तो मनुष्य में पाए जाने वाले तीन तत्वों ज्ञान, भावना और क्रिया का क्या होगा? ईश्वर के अभाव में ये तीनों तत्व झूठे सिद्ध हो जाते हैं। ईश्वर विहीन धर्म को स्वीकार करना संभव नहीं है। सभी धर्म किसी न किसी रूप में ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। धर्म में ईश्वर का होना निम्नलिखित तर्कों द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। इसमें पहला है, आधुनिक मानव का विश्वास ईश्वर की अपेक्षा विज्ञान और प्रकृति के नियमों में अधिक रहा है। अर्थात मनुष्य विज्ञान की प्रक्रिया तथा प्रकृति के नियमों को अपने से अधिक शक्तिशाली मानता है। यही शक्ति की परिकल्पना ईश्वर में चरितार्थ होती है, किंतु आधुनिक अनिश्वरवादी या मानववादी प्रत्यक्ष रूप से धर्म के ईश्वर को स्वीकार न करके प्रकृति के नियमों की शक्ति में विश्वास करता है। उसकी इस स्वीकृति में अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर को ही स्वीकार करना कहा जा सकता है। इससे सिद्ध होता है कि धर्मों में ईश्वर का होना अनिवार्य है। दूसरा है, मनुष्य में अपूर्णता, सीमितता और निर्भरता की भावना देखी जाती है। इन भावनाओं से ही यह सिद्ध होता है कि मनुष्य से अलग किसी पूर्ण, असीम तथा निर्भर योग्य सत्ता का अस्तित्व है और यह सत्ता धर्म में देखी जा सकती है। जहाँ मनुष्य अपनी इन भावनाओं की उपासना के द्वारा प्रकट करता है, यदि ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व स्वीकार न करते तो मनुष्य की धार्मिकता की भावना की पूर्ति नहीं हो सकती। मनुष्य अपने को असहाय अवस्था में धर्म के इसी सत्ता की शरण लेता है और शांति का अनुभव करता है। ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ईश्वर ही धर्म का केंद्र बिंदु है। धर्म दार्शनिक फ्लिंट ने मनुष्य के लिए ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि ईश्वरवाद से कुछ कम स्वीकार नहीं किया जा सकता और ईश्वरवाद से अधिक कुछ संभव भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के अभाव में धर्म संभव नहीं है। पृष्ठ संख्या 410। अब बिंदु तीसरा है, मानववादियों का ईश्वर के अनास्तित्व के विषय में तर्क यह है कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में विश्वास के प्रमाण अपर्याप्त हैं। उनका कहना है कि ईश्वर मानव जात के संरक्षण और बचाव के लिए या तो अर्थहीन है या अप्रासंगिक है। उनका आक्षेप यह है कि ईश्वर दैवी प्रकाशन, कर्मकांड और प्रथाओं आदि से मानव जात की सेवा नहीं होती। मानववादी की ईश्वर के प्रति ऐसी धारणा का विरोध करते हुए एक विचारक का कथन है कि मैं अनुभव करता हूँ कि ईश्वर का अस्तित्व है। यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो हम क्रूर या कठोर तथा साथ में कायर भी हो जाएंगे। हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, खेत खलियान में काम करते हैं, किसानों और मजदूरों से, कारखानों और खदानों में कार्यरत कामगारों से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी कल्पना के अनुरूप रचा है। इसलिए यह कहना कि ईश्वर का अस्तित्व अर्थहीन है और उसकी सेवा मनुष्य जात के लिए कुछ नहीं है, सत्य कथन नहीं है। यदि हम ईश्वर के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप में सिद्ध नहीं कर सकते तो हम ईश्वर के अस्तित्व को असिद्ध भी नहीं कर सकते। यदि बुद्ध को, जिनकी गणना ईश्वर के रूप में की जाती है, मानववादी ही मान ले तो संभवतः वे मानववादियों में सबसे अधिक बुद्धिमान मानववादी कहे जा सकते हैं। इनसे जब यह पूछा गया कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है, तो उन्होंने मौन धारण कर लिया और प्रश्नकर्ता से कहा कि अपना कर्तव्य करो। यही सबसे महत्वपूर्ण था और उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। लेखक के उपयुक्त तर्क से यही सिद्ध हो रहा है कि धर्म के लिए ईश्वर की मान्यता आवश्यक है। ईश्वर रहित धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। चौथा है, ईश्वर विहीन धर्म की परिकल्पना नहीं की जा सकती। धर्म हो और ईश्वर का अवबोध न हो, यह संभव नहीं है। धर्म और ईश्वर विहीन कहने से आत्मविरोध प्रकट होता है। धर्म में ईश्वर समाहित है। कुछ लोग ईश्वर के अर्थ पर धर्म और ईश्वर की संगति बैठाते हैं, यह उचित नहीं है। ईश्वर एक पवित्र, अति प्राकृतिक, सगुण, निर्गुण और पारलौकिक आदि की परिकल्पना में आता है और वह इन विश्लेषणों से भी परे है। एक आध्यात्मिक सत्ता है। आध्यात्मिकता की भावना ईश्वर की उपस्थिति का बोध कराती है। यह बोध धर्म में ही संभव है। अध्यात्म के परे जो भी विचार होंगे वे विचारधारा की श्रेणी में होंगे, उन्हें धर्म नहीं कह सकते। साम्यवाद, विज्ञानवाद या प्रकृतिवाद आदि धर्म इसलिए नहीं है कि इनमें अध्यात्म या पारलौकिकता या ईश्वर जैसी कोई धारणा नहीं है। यदि ऐसा स्वीकार कर लें तो जिन धर्मों में अस्पष्टतया ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है वे भी धर्म ही हैं। धर्म एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करें तो यह जीवन पद्धति किसी आध्यात्मिक सत्ता से ही पूरित होती है। इसी को किसी ने सगुण ईश्वर के रूप में मान लिया है और किसी ने निर्गुण या अतींद्रिय सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। अध्याय 26 समाप्त।